ये हाउस वाइफ सेक्स डिज़ायर कहानी एक संभ्रांत परिवार की महिला की है, जिसे अंतरवासना की एक कहानी से प्रेरणा मिली और उसकी लेखिका सहेली से हिम्मत मिली। मैं मानती हूँ कि कोई मर्द हो या औरत ये नहीं कह सकते कि उन पर किसी की कहानी का कोई असर नहीं होता, और जब बात काम वासना की हो तो हर व्यक्ति के दिमाग में नई नई फैंटेसीज जन्म लेती रहती हैं। जो पति पत्नी एक दूसरे की सहमति से अपनी फैंटेसी पूरी करना चाहते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते वो असफल हो जाते हैं। मेरी सहेली हया ने यही किया कि उसकी कहानी पढ़कर एक भी औरत अपनी दबी हुई हसरतों को पूरा करने की ठान लेगी तो उसका अपनी कहानी छपवाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैंने भी जितना मैं हया के बारे में जानती थी वो सब अपनी लेखन प्रतिभा का इस्तेमाल करके मिर्च मसाला लगाकर अपनी एक और सहेली को सुना दिया, जिससे वो कहने लगी कि जब से मैंने हया की कहानी पढ़ी है तब से मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। तूने उस आग में अपनी कामुक बातों का घी डालकर उसे और भड़का दिया है। मैं भी चाहती हूँ कि मन की कुछ हसरतें तो पूरी कर लूँ, वरना बाद में तो तस्वीर पर हाथ टंगना है और थोड़े समय में लोग भूल जाएंगे। मैं समझ गई, उस सहेली का नाम नीलम था, कि वो जल्द ही कुछ न कुछ गुल खिलाएगी। अब नीलम की कहानी, नीलम की ही जुबानी। मैं एक 40 वर्षीय आकर्षक औरत हूँ। मेरा फिगर 34, 32, 36 का है। मैं और मेरे पति सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा खुले विचारों के हैं और प्रकृति के इस वरदान को भरपूर एंजॉय करते हैं, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण और घर के अनेक मसलों के कारण कई बार केवल ख्याली पुलाव ही पकाकर रह जाते हैं। अब मेरे साथ हुआ यूं कि जब से मैंने हया की कहानी पढ़ी तभी से मेरे मन में किसी गैर मर्द से चुदाई के ख्याल आने लगे थे। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बस पागल ही हुई जाती थी, और जब भी मुझे कोई भी मर्द देखता उसको देखकर मैं यही सोचा करती थी कि ये कब पटेगा, ये कब मेरा होगा। कुछ महीने पहले की बात है, मैं एक विवाह में पति और अन्य रिश्तेदारों के सहित पुष्कराज चली गई। वहाँ ब्रह्मा जी के एक प्राचीन मंदिर के दर्शन हेतु करने निकले, जो मुख्य द्वार से बहुत दूर था। विचित्र बात यह हुई कि वहाँ कोई रिक्शा उपलब्ध नहीं था। हम काफ़ी दूर तक पैदल चलते जैसे तैसे मंदिर पहुँचे। सब के सब थक गए थे। इतने में एक युवक दिखा। मैंने पति से कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, लौटने में पैदल नहीं चल पाऊँगी, मेरी एड़ियाँ दुख रही हैं, कुछ ना कुछ करो ना। तो उसने कहा, यार यहाँ कोई ई रिक्शा या ऑटो भी नहीं है। इतने में मैंने युवक को देखकर कहा कि वो युवक देखो मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ रहा है, क्यों ना हम उससे मदद मांग लें, वो मुझे हमारी कार तक छोड़ दे। मेरे पति सुनील को कोई आपत्ति नहीं थी। मैं उस युवक के पास गई, मैंने उसको हेलो कहा और कहा, क्या तुम मुझे कार स्टैंड तक लिफ्ट दे दोगे? उसने मेरे को एक नज़र देखा। किसी भी सेक्सी औरत को देखकर मर्द के दिमाग में सबसे पहले यही विचार आता है कि क्या ये पट सकती है। उसने कहा, ज़रूर ज़रूर। उस एक नज़र में ही उसने मेरी फिगर का जायज़ा भी ले लिया। जाहिर था कि उसका मन ललचा रहा था और मैं मन ही मन खुश थी कि शिकार खुद मेरे चंगुल में आ रहा है। उसने गाड़ी स्टार्ट की, मैं उसके पीछे उससे दूर होके बैठी थी। वह रास्ता करीब करीब 3-4 किलोमीटर या इससे ज़्यादा था। मैं देख रही थी कि वो बंदा गाड़ी बड़े आराम से चला रहा था, जैसे उसे पहुंचने की कोई जल्दी ही ना हो। मैं भी कुछ दूर बढ़ते ही अपने दोनों स्तन उसकी पीठ में गड़ा दिए और अपना हाथ उसकी जांघ पर रख कर उससे बात करने लगी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया कि मेरा नाम जीतू है, मैं यहीं रहता हूँ, ज्वेलरी की दुकान है, पास के गांव का हूँ, हफ्ते में एक बार जाता हूँ। मैंने पूछा, शादी हो गई जीतू? उसने कहा, हाँ हो गई, पत्नी परिवार के साथ रहती है और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसने बिल्कुल अकेला शब्द पर जोर दिया। मैं उसके संकेत को समझ रही थी। मेरी चूत में गुदगुदी सी हुई। मुझे लगा इसे तो ऊपर वाले ने मेरे ही लिए भेजा है शायद। बस फिर क्या था, मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए अब तो जीतू से चुदवाना ही है। मैंने उसे ललचाने के लिए कामुक अंदाज में पूछा, तुम तो कड़क जवान हो, यहाँ पर अकेले रहते हो तो रात में चैन कैसे पड़ता है? वह भी समझ गया और खुली बातें करने लगा। उसने कहा जैसे तैसे मन मार के सो जाता हूँ क्योंकि उसके अलावा कोई और उपाय ही नहीं है। मेरे बूब्स उसकी पीठ पर निरंतर मालिश कर रहे थे, मैं भी पूरा आनंद ले रहा था, बीच बीच में जानबूझ के हल्का ब्रेक लगा रहा था। करीब 10 मिनट बाद हम लोग कार स्टैंड तक पहुँचे, वहाँ उसने मुझे उतारा और बोलने लगा मैं जाऊँ यार तुम्हारे परिवार के आने तक रुकूँ। स्पष्ट था कि वह मेरे साथ समय बिताना चाहता था, उसे एक पराई औरत के साथ काम कल्पना करते हुए कामुक बातों में मज़ा सा आ रहा था और उसकी जींस 45 डिग्री पर उसका तना हुआ लंड दिखाई दे रही थी। मैंने भी लोहा गर्म देखकर एक और चोट मार दी, पूछा क्यों मिस्ट्री क्या है? तो उसने भी शर्म लिहाज छोड़कर कहा जब तुम्हारे जैसी गर्म औरत मेरे पीछे बैठकर अपने बूब्स को मेरी पीठ में गड़ा के मेरी वासना की आग को भड़काएगी तो इसका तो कर्तव्य बनता है ना कि ये तुरंत सेवा देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अब यह सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन बदले में इसको भी तो ठंडा होने के लिए तुमसे कुछ चाहिए। तो मैं रिझाने के अंदाज में पूछने लगी इसको ठंडा करने के लिए फिर क्या करना होगा? उसने कहा अब तुम जैसे गर्म औरत को यह भी बताना पड़ेगा, मुझे तो लगता है कि तुम इतनी एक्सपर्ट हो कि मर्द की आंखों से उसके चेहरे के भाव से उसकी भावनाओं को पढ़ लेती होगी। फिर उसने बेझिझक मुझे दिखाते हुए अपने लंड को सेट किया और पूछा तुमने मुझसे तो सब जान लिया पर अपने बारे में भी कुछ बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम नीलम है जीतू, मैं चित्तौड़ की रहने वाली हूँ और अभी एक विवाह में आई हुई हूँ। उस पर उसने कहा क्या ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है? इस पर मैंने कहा मैं भी सोच तो रही हूँ कि भगवान ने शायद मुझे तुमसे मिलवाने के लिए इतनी दूर मंदिर तक भेजा है। तो वो भी शर्मा गया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उसने कहा फिर कब मिलेंगे? मैंने कहा देखो मैं विवाह में आई हुई हूँ, पति जीजा जीजी ननन नंदोई सब साथ में हैं, ऐसे में निकलना मुश्किल तो है लेकिन कोई और जुगाड़ लगाती हूँ। उसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने नंबर देने से तो मना कर दिया पर यह कहा कि तुम रिजॉर्ट के बाहर करीब 1-1.5 बजे के बीच मेरा इंतज़ार करना, मैं मौका मिलते ही आ जाऊँगी और फिर उसके बाद तुम्हारे पास 2 घंटे हैं हम दोनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, काफ़ी होंगे ना? उसने कहा काम चल जाएगा। फिर मैंने पूछा तुम्हारे कमरे तक जाने में कोई समस्या तो नहीं होगी? उसने कहा नहीं मेरा कमरा एक तरफ है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारी कई तरह की बातें हुई, उसने मेरे बारे में बहुत पूछताछ की, काफ़ी झूठ काफ़ी सच काफ़ी मिर्च मसाला लगाकर मैंने बताया। मैंने भी उसे उसकी गर्लफ्रेंड और पराई औरतों से संबंधों के बारे में पूछ लिया, वो एकदम खुल गया और उसने बताया मैंने कम से कम 14-15 औरतों को निपटाया है, उनमें से 2 गर्लफ्रेंड 2 पड़ोस की भाभियाँ और 2 प्रोफेशनल थी। प्रोफेशनल को तो जब मैं जयपुर और दिल्ली किसी काम पे ले गया था तब वहाँ उनको चोद कर आया था, बाकी ऐसी औरतें थी जो गांव में बहुत आसानी से खेतों में काम करते हुए मिल जाती हैं, जो 500-600 में मान जाती हैं या छोटे मोटे गिफ्ट ले लेती हैं, कोई कोई तो 500 में भी मान जाती है। कहते हैं जब लंड तन जाता है तो मर्द का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जाहिर था वह नहीं उसका लंड बात कर रहा था और मुझे चोदने के लिए बहुत बेताब था। इतने में हमने देखा कि परिवार वाले सब आ गए हैं, सब आए तो जीतू ने सबको नमस्ते करी और मैंने उसकी तारीफ में कहा मैंने तो इनको बोला था कि अब आप जाओ, तो भैया बोलने लगे कि नहीं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। परिवार वाले उस सदव्यवहार से बहुत खुश हुए। मेरे परिवार वालों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमने इस समय का कितना अच्छा सदुपयोग किया है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब अगले दिन राज से मिलने जाने के बारे में सोच रही थी कि मैं इतने रिश्तेदारों के बीच से कैसे निकलूंगी, पति को इस बारे में कुछ बताऊं या नहीं और मेरी झाँटें जो भी जंगल की तरफ बढ़ गई हैं इन्हें साफ करूं भी या नहीं, क्योंकि मुझे क्या पता था कि पुष्कर में मुझे नया लंड मिलने वाला है। इन सभी विचारों में डूबी मैं रिजॉर्ट में पहुंची। रात को सोते समय मैंने निश्चित किया कि पति को तो बताकर निकलना ही ठीक रहेगा, जिससे 2 घंटे तक जब मैं नहीं दिखूं तो वो परेशान ना हो और परिवार वालों से मेरे बारे में पूछताछ भी ना करें। यही सब सोचकर मैंने रात को पति से कहा यार गैर मर्द से चुदने का बढ़िया मौका मिला है। तुम कहो तो कल उसको भुना लूं। मेरे पति तो खुद इतने कामों के इतने रसियां हैं, कुछ कुछ तो अंदाजा उन्हें भी ब्रह्मा जी के मंदिर में राज के साथ जाने मेरे उतावलेपन से हो गया। उसने खुद आगे चलकर बोला, क्यों उस नवयुवक को पटा लिया क्या तुमने? और अब उसके लंड से चुदने का मन है तेरा? फिर वो झेप के और बोले, जा नीलू जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। यही सोच सोच कर मैं रात को जीतू के सपने ले लेकर सो गई। मेरे पति को मेरी इस कामुक इच्छा पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। दिक्कत सिर्फ यह थी कि मेरी दीदी और ननंद दोनों बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और किसी भी तरीके से उन दोनों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी इमेज का भी ध्यान रखना था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ मेरी इज्जत की भी माही चुट जाए, क्योंकि अगर बात खुली तो सारे परिवार में मेरे जीजा और नंदोई हैं। सबसे पहले वो दोनों ही मुझे निपटाने के बारे में सोचेंगे, और नंदोई वह भी अपने साले की पत्नी को जब भी देखता है उसको देखकर यही सोचता है कि काश ये मेरे नीचे आ जाए। जीजा तो बहन के सामने भी ऐसी कामनाओं का इजहार कर देता है। नंदोई जीजा जितना चंचल तो नहीं होता, लेकिन मौका ज़रूर ढूंढ लेता है। हंसी मजाक का रिश्ता तो देवर भाभी का भी होता है, पर देवर को इतनी छूट नहीं होती जितना नंदोई ले लेता है। कहीं ना कहीं देवर सामाजिक दबाव में रहता है। देवर तो भाभी की तरफ से संकेत मिलने पर ही कुछ करने कहने की हिम्मत रखता है। जीजा और नंदोई तो आँखों में ही अपनी दमित वासना टपकती हुई दिखा देते हैं। सुबह जब मैं नहाने के लिए घुसी तो मैंने सोचा, यार पहली बार किसी गैर मर्द से चुद रही हूँ, इसलिए चूत को तो भरपूर मज़ा आना ही चाहिए। मैंने झाटे साफ करके अपनी चूत को चमकाया और सुगंधित क्रीम लगा ली। दिन में हम सबने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद कुछ देर नृत्य का प्रोग्राम था। 12:30 पर हमने लंच प्रारंभ किया। मेरा मन खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, मेरा सारा ध्यान रिजॉर्ट के गेट की तरफ था। मैं ये भी देख रही थी कहीं कोई मेरी तरफ तो नहीं देख रहा है। मैंने पाया कि मेरे पति ही सिर्फ कनखियों से मुझे देख रहे थे। उनके जवाब में मैं भी झेपती हुई मुस्कुरा रही थी। बाकी सब लोग तो व्यंजनों का लुत्फ लेने में ही मस्त थे। मुझे बार बार ये लग रहा था, क्या जीतू आ गया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आए या निराश होकर चला जाए। जैसे तैसे मैंने फटाफट लंच किया, कमरे में जाने का बहाना किया और रिजॉर्ट के हाल में से होती ही बजाय अपने कमरे में बाहर की तरफ आ गई। विवाह के कार्यक्रम के अनुसार एक शानदार महंगी साड़ी पहनी और ज्वेलरी पहनी हुई थी। मैं बाहर पहुंची तो 1:30 बज चुके थे। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि जीतू इंतज़ार करके निकल गया हो, पर जब मर्द को नई चूत मिलने वाली हो तो वह घंटों दिनों महीनों इंतज़ार कर सकता है। मैंने देखा कि जीतू रिजॉर्ट के गेट से 10 कदम की दूरी पर खड़ा था। आज तक उसे चुदने के लिए लक दक गहने कपड़े सजी हुई संभ्रांत परिवार की प्रतिष्ठित महिला नहीं मिली होगी, क्योंकि उसने जितनी भी औरतों को अब तक चोदा है सामान्य भाभी, चाची या गर्लफ्रेंड थी, या गरीब खेत में काम करने वाली औरतें जिनके पास देह के सिवा कुछ भी नहीं था, और वो भी मैली कुचैली, मिट्टी और पसीने से लथपथ। इसके अलावा जिन रंडियों को उसने जयपुर और दिल्ली में रगड़ा, उनका तो धंधा ही वही था, इसलिए वे तो खुले और कम कपड़े पहनती हैं। ऐसे में एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार की बहू शादी के घर से निकलकर अनायास ही चुदवाने को आ जाए तो मर्द को अलग उत्तेजना का एहसास होता है। मैं जीतू की मोटरसाइकिल पर बैठी और इस पर एक शरीफ औरत की तरह पूरे सभ्य तरीके से बैठी। मेरा बदन बिल्कुल भी उससे स्पर्श नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो मेरे कपड़ों के कारण सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो रहा था, दूसरे में उसकी बेताबी को बढ़ाना चाह रही थी। उसके कमरे में पहुंचने पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क कर मेरे काबू के बाहर होने लगा, क्योंकि पहली बार मैं किसी गैर मर्द के साथ उसके कमरे में अकेली मस्ती मारने की मंशा से पहुंची थी। हाउस वाइफ सेक्स डिज़ायर की ये कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। अपने मर्यादित विचार मेल या कमेंट्स में लिखें। कहानी के अगले अंक देवभूमि में रासलीला में पढ़िए कि किस तरह नीलम अपनी स्वनिर्मित बंदिशों से मुक्त होकर अपनी जवानी का भरपूर आनंद लेती है। धन्यवाद।